আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ ماہ مبارک خلیفہ اول جانشین رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ ہے. اسی مناسبت سے آج ہم آپ حضرات کے سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات، ان کی سیرت اور ان کی جامع کمالات سیرت کے چند گوشے پیش کریں گے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اصحابی کن نجوم فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم. میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ. یعنی اس میں کسی ایک کی تخصیص نہیں ہے، سرکار نے کسی ایک کا نام لے کر نہیں فرمایا. جنرل طور پر سارے صحابہ جتنے بھی ہیں سب اس میں شامل. اور کوئی شخص یہ کہے کہ مجھ سے فیض یافتہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب کامل ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے. ایک استاد کے 10 شاگرد ہیں، 10 کے 10 قابل نہیں ہو سکتے. 50 شاگرد ہیں، 50 کے 50 قابل نہیں ہو سکتے. کوئی ایک نکل آئے گا جو بالکل غبی کن ذہن، اور کوئی ایک نکل آئے گا جو سب سے زیادہ ذہین. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جس کو بھی میں نے پڑھایا وہ سب کے سب قابل ہیں، لیکن ایک شخصیت اس پوری کائنات میں ایسی ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھ سے فیض یافتہ جتنے بھی ہیں یہ سب آسمان ہدایت کے ستارے، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ. اس لیے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ ہمارے سر کے تاج. ہم سب کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. پہلے یہ سمجھیے کہ صحابی کون ہے. صحابی کے معنی دوست، صحابی کے معنی ساتھی، صحابی کے معنی ساتھ رہنے والا. ٹھیک ہے نا؟ اب کوئی ہمارے ساتھ ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا دوست ہے. آپ سمجھ جاتے ہیں ان کے ساتھ رہتا ہو، ان کی صحبت میں رہتا ہو. صحابی کا لفظ جب بھی استعمال کیا جائے گا اور جہاں بھی استعمال کیا جائے گا، ہمارا ذہن فوراً منتقل ہو جائے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان غلاموں کی طرف جو سرکار کے ساتھ رہے، جنہوں نے صحبت اٹھائی، جو محفل میں بیٹھے، براہ راست فیض حاصل کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان پر خاتمہ ہوا. یہ صحابی کی تعریف ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جس نے بھی حضور کو دیکھا وہ صحابی، تو یہ نامکمل ہے تعریف. کیوں؟ دیکھنے والے تو کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، منافق بھی ہیں. ابو جہل نے دیکھا، ابو لہب نے دیکھا، مشرکین، منافقین، کافرین سب نے دیکھا، تو کیا یہ سارے صحابہ ہو گئے؟ نہیں. اسی لیے شرط لگائی گئی، ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہو، وہ ہے صحابی. اور صحابی کا مرتبہ امت کے اولیاء، اقطاب، اغواس سب سے بلند. انسان محنت کر کے، کوشش کر کے ولی بن سکتا ہے، تقوی پرہیزگاری اختیار کر کے ولایت کے کسی نہ کسی مقام پر پہنچ سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا. کتنی محنت کر لے صحابی نہیں بن سکتا. اس لیے صحابی وہی ہے جو ایمان کی آنکھ سے حضور کو دیکھے اور پھر ایمان پر خاتمہ ہو، وہ صحابی. پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ نے کہا کہ صحابی سب سے بلند ہیں، صحابی کا مقام امت کے اولیاء، اقطاب، اغواز جتنے بھی ہیں سب سے بلند ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیا کثرت نوافل کی وجہ سے یہ مقام ملا؟ کثرت جہاد کی وجہ سے مقام ملا؟ تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے کی وجہ سے مقام ملا؟ کثرت نوافل تو امت کے اولیاء بھی پڑھتے، ساری ساری رات عبادت میں نوافل میں گزار دیتے، تلاوت قرآن کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں. کثرت جہاد امت کے مجاہدین بھی کرتے، ایک سے ایک مجاہد موجود ہیں. آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضرت خالد بن ولید سے لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی تک اور اس کے بعد جتنے سلسلہ آج تک چل رہا. پتہ چلا صحابی کو یہ مقام ملا نہ کثرت نوافل کی وجہ سے، نہ کثرت جہاد کی وجہ سے، نہ تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے، نہ عبادت کی وجہ سے. صحابی کو مقام ملا چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے کے وجہ سے. ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کو دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہوا، صحابیت کے مقام پر پہنچ. یہ ہے صحابی کی شان. اس لیے ہم تمام صحابہ کا ادب احترام کرتے ہیں اور سب پر لازم ہے، ضروری ہے. یہ ایک میں نے مختصر طور پر صحابی کی تعریف بیان کر دی، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے. اب دیکھیے جتنے صحابہ ہیں ان سب میں درجے ہیں، مراتب. اصحاب بیت رضوان ان کا مقام الگ ہے، اصحاب بدر جنگ بدر میں جو شریک ہوئے ان کا مقام الگ ہے، جو جنگ احد میں شریک ہوئے ان کا مقام الگ ہے، عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ان کا مقام الگ ہے، اور خلفاء راشدین ان کا مقام الگ ہے. اور ان تمام صحابہ میں سب سے بلند مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے صحابی کہ صحابیت کو ان پر ناز ہے، مصاحبت ان پر قربان ہے. ایسے صحابی کہ جن کی صحابیت کی گواہی قرآن دے رہا. قرآن اٹھا کر دیکھیے، جب غار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورا واقعہ بیان کر رہا. صدیق اکبر کی شان دیکھو، قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب کہا اپنے ساتھی سے، کس نے کہا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس سے پہلی آیت میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرے جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، غار ثور میں تھے نا، واقعہ آپ نے سنا ہوا، اس واقعے کو قرآن کریم بیان کر رہا. جب کافروں کی آہٹ سنی، ان کے قدموں کی آہٹ سنی، آواز سنی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے، سرکار کافر پہنچ گئے، یہ تو ہمارے سر پہ پہنچ گئے، اگر انہوں نے جھک کر دیکھا تو ہم تو غار میں ہیں، یہ ہمیں پا لیں گے، یہ پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی حزن و ملال نہیں، سرکار اطمینان سے سکون. حضور نے کیا فرمایا؟ ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ. اسی کو قرآن نے بیان کیا، اذ یقول لصاحبہ، جب کہا انہوں نے اپنے ساتھی سے، ساتھی کون تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. قرآن نے صدیق اکبر کو حضور کا ساتھی صحابی قرار دیا، دیگر صحابہ بلا شبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں، صحابی ہیں، مگر صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ ان کی صحابیت کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا. اذ یقول لصاحبہ، اور لصاحبہ سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. سارے صحابہ ہیں، ان کی صحابیت کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا. فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو جنتی کو زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے ابو بکر کو دیکھ لے. جس جماعت میں ابو بکر ہوں اس میں کسی کو امامت کا حق نہیں. جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. یہ ساری خصوصیات سرکار نے بیان فرمائی، فضیلتیں بیان فرمائی. انفرادی اجتماعی دونوں فضیلتیں سرکار دو عالم علیہ السلام نے صحابہ کی بیان فرمائی، کچھ وہ جس میں سارے صحابہ شامل اور کچھ وہ جو الگ الگ انفرادی طور پر، جس طرح کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، اسی طرح فاروق اعظم، اسی طرح عثمان غنی، اسی طرح علی مرتضیٰ اور دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان فرمائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس جماعت میں ابو بکر ہوں اس میں کسی کو امامت کا حق نہیں۔ اسی لیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں 17 وقتوں کی نماز پڑھائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، 1, 2, 3 نہیں، 17 وقتوں کی نماز، اور سرکار نے اپنی جگہ اپنے مصلی امامت پر کھڑا کر کے گویا یہ واضح کر دیا کہ میرے جانشین ابو بکر ہیں، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اسی لیے جب بیعت کا موقع آیا اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے لوگوں نے پوچھا، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا، جس شخص کو ہمارے نبی نے دین کے معاملے میں ہمارا امام بنا دیا، ہم دنیا کے معاملے میں اس کی امامت کو کیوں نہ قبول کریں؟ دین تو دنیا سے افضل ہیں، دین کے معاملے میں امام بنا دیا، نماز میں امام بنا دیا، تو ہم دنیا کے معاملے میں اس کی امامت کیوں نہ قبول کریں؟ فوراً آپ نے بیعت کر لی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب متفق تھے کہ جانشین رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنی خلافت کے لیے زبردستی بیعت لی ہے، لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ایسا نہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سب نے متفق طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کیا اور سب نے آگے بڑھ کر بیعت کی۔ بہر صورت وجہ کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان رسالت سے فضائل سنے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ جانتے تھے کہ کتنی محبت ہے۔ اسلام لانے سے قبل آپ نے ایک خواب دیکھا، آسمان سے چاند اترا اور میری گود میں آ گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اور اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے ایک راہب کے پاس گئے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، ایک چاند اترا ہے اور میری گود میں آ گیا۔ اس نے تعبیر یہ دی، پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا اور تم ان کے پہلے خلیفہ بنو گے۔ تعبیر لے کر آ گئی، مکے پہنچے، سرکار نے اعلان نبوت فرما دیا تھا، صدیق اکبر حاضر ہوئے، حضور نے اسلام پیش کیا۔ بعض روایتوں میں آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا، وہی خواب جو تم دیکھ کر آ رہے، وہی تو میری نبوت کی دلیل ہے۔ انہوں نے سنا اور اسی وقت کلمہ پڑھ کر غلاموں میں شامل ہو، سابقون الاولون میں سے صدیق اکبر، وہ لوگ جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی، کوئی چونو چرا نہیں کی، کوئی بحث مباحثہ نہیں کیا، بلا چونو چرا اسلام قبول کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جس دن اسلام قبول کیا اس دن سے لے کر آخری وقت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، ہر غزوے میں، ہر جنگ میں، ہر سفر میں، ہر حضر میں، ہر جگہ صدیق اکبر ساتھ۔ ان کی خواہش بھی یہی تھی، ایک دن حاضر ہوئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتے ہیں، سرکار مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ کون سی؟ حضور، آپ کے پاس بیٹھنا مجھے پسند ہے، دوسرا آپ کے چہرے کو دیکھنا مجھے پسند ہے، تیسرا اپنا سب کچھ آپ پر لٹانا یہ مجھے پسند ہے۔ پہلی چیز کیا کہی؟ آپ کے پاس بیٹھنا مجھے پسند ہے، ہر وقت حضور کے پاس رہتے تھے، دیگر صحابہ آتے چلے جاتے تھے، یہ مستقل بیٹھے رہتے، مستقل بیٹھے رہتے، ہر وقت حضور کے ساتھ، جہاں سرکار جا رہے ہیں صدیق اکبر ساتھ ہیں، اور آپ ان کی حیات مبارکہ کا جائزہ لیں، حضور مکے میں ہیں تو صدیق اکبر ساتھ ہیں، مدینے میں تو صدیق اکبر ساتھ ہیں، ہجرت میں ساتھ ہیں، بدر میں ساتھ ہیں، احد میں ساتھ ہیں، خندق میں ساتھ ہیں، حنین میں ساتھ ہیں، جتنی جنگیں ہوں سب میں ساتھ ہیں، हर सफर में, हर हजर में साथ हैं, यहां तक के आज रोजे में भी साथ हैं। सरकार ने फरमाया तुम हर जगह साथ रहे, अब तुम रोजे में भी साथ रहो और जन्नत में भी साथ। ऐसा सहाबी, सहाबियत को उन पर नाज है, सहाबियत उन पर कुर्बान है, ऐसा सहाबी जो हमेशा साथ, विसाल के बाद भी साथ, जन्नत में भी साथ, ऐसा कौन सा सहाबी? सहाबियत को उन पर नाज, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला। और दूसरी चीज क्या कही? आपके चेहरे को देखना मुझे पसंद। अब कैफियत क्या थी? जब सरकार दो आलम अलैह सलात वसलाम तशरीफ फरमा होते, रौनक अफरोज होते, दीगर सहाबा बैठते, हुजूर के चेहरे अनवर की तरफ निगाह करने की ताब नहीं रखते थे। अगर एक नजर देखते तो फिर नजरें झुका लेते, अदब। सरकार का एक रौब, एक जलाल, हालांकि रहमतुल्लिल आलमीन, मगर सहाबा एहतराम कर। और इधर क्या कैफियत थी? सिद्दीक अकबर नजर हटाते ही नहीं थे, सहाबा चेहरे को देखने की ताब नहीं रखते थे, ये चेहरे से नजर हटाते ही नहीं। जब आकर बैठते मुसलसल हुजूर के चेहरे को देख रहे, मुसलसल चेहरे को देख रहे हैं, या रसूलल्लाह ये मुझे पसंद। और तीसरा, अपना सब कुछ आप पर लुटाना ये मुझे पसंद, सब कुछ आप पर लुटाना ये मुझे पसंद। जंगे तबूक के मौके पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया, मुसलमानों लश्कर इस्लाम की मदद करो। सहाबा आ गए, जिसकी जो हैसियत थी वो ले आया, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, कोई थोड़ा सा माल ले आया, कोई उससे ज्यादा ले आया, किसी के पास कुछ चंद चीजें थी वो ले आया, जैसी हैसियत। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ने अपने घर चले गए और जाकर कुल सामान इकट्ठा किया और उसके दो हिस्से किए, आधा घर वालों के लिए और आधा बारगाह रिसालत में। अब फरमाते मैं दिल में सोच रहा हूं आज मैं सिद्दीक अकबर से बढ़ जाऊं, ये हर मामले में मुझसे आगे बढ़ जाते, हर नेक काम में मुझसे आगे बढ़ जाते, आज मैंने ऐसा काम किया है, कुल सामान इकट्ठा किया आधा घर वालों के लिए और आधा उसको बांधकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह। अब देखो सरकार की शान देखो, और हुजूर अलैहिस्सलाम की जबान रिसालत से निकले हुए जुमलों पर गौर कीजिए। फारूक आजम आए, कितना सामान लेकर? आधा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सामान। हुजूर ने फरमाया, मा तरकता ले अहलिका या उमर, ए उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ा? जुमलों पे गौर कीजिए, मा तरकता ले अहलिका या उमर, उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ा? इन्होंने क्या कहा? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप कुर्बान, आधा मैंने घर वालों के लिए छोड़ा और आधा आपकी बारगाह में लिया। फरमाया ठीक। अब ये कहते मैं दिल में खुश हो रहा हूं, मैं बढ़ गया। और वहां क्या हुआ? वहां तो इश्क का अंदाज ही निराला, कुछ नहीं छोड़ा, कुल का कुल सामान लिया और सब हुजूर की बारगाह में। छोड़ने की जरूरत क्या है? आज तो महबूब ने मांगा है, सब दे दो। आज तो आका ने मांगा है, दे दो सब उनकी राह में, उन्हीं का तो दिया हुआ है, उन्हीं के कदमों से तो मिला है, उनके कदमों की बरकत से मिला है, सब दे दो, सब उठाकर बारगाह रिसालत में। सरकार ने देखा अबू बकर आ रहे हैं, लाकर रख दिया। हल तरकता ले अहलिका या अबा बकर, अबू बकर घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा? फर्क हो गया जुमले में। मा तरकता ले अहलिका या उमर, उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ा? और इनसे हल तरकता ले अहलिका या अबा बकर, ए अबू बकर घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा? जुमले ने ही बता दिया कि आका जानते हैं कि ये आधा छोड़कर आ रहे हैं, ये सब लेकर आ रहे हैं। जुमले ने ही बता दिया। जुमलों पे गौर करते हैं ना, अगर कोई ले आए, अरे भाई कुछ छोड़ा, उर्दू का जुमला है ना, कुछ छोड़ा या सारा ले आए, यही सरकार फरमा रहे हैं। हलता रखता ले आली का या अबा बकर, घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा? हुजूर जानते हैं ये तो सब कुछ लेकर आ रहे हैं। और उन्होंने यही कहा, घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी। यहां एक और बात की तस्हीह कर दूं, आज लोग कहते हैं हमारे लिए अल्लाह काफी है, जगह जगह स्टिकर लगे हुए ना, हमारे लिए अल्लाह काफी है, रक्षों के पीछे स्टिकर लगे, हमारे लिए अल्लाह काफी है, टैक्सियों के पीछे हमारे लिए अल्लाह काफी। ये उन लोगों का अकीदा है। और सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला का अकीदा क्या है? मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी। हाँ, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा भी यही है, हमारे लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी। सिर्फ अल्लाह काफी नहीं, अल्लाह और उसका रसूल काफी है। ये सहाबा का अकीदा है, ये सिद्दीक अकबर का अकीदा है रजी अल्लाह तआला। तो क्या फरमाया? सारा लिया है, कुछ छोड़ा नहीं, सिद्दीक के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा, परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस, और कुछ नहीं चाहिए। सरकार जब आप मौजूद हैं तो कुछ नहीं चाहिए। तो कहा था कि मुझे आप पर अपना सब कुछ लुटाना पसंद है, तो सिर्फ कहा नहीं करके भी दिखा दिया, सब कुछ लुटा दिया। इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एहसान किया मैंने हर एक के एहसान का बदला चुका दिया सिवाय अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला। अब हिजरत का मौका आता है, हिजरत कर रहे हैं, काफिरों ने जुल्म की इंतहा कर दी। सरकार ने फरमाया सहाबा से हिजरत करो, कहां जाएं? मदीने तैयबा चले जाओ, यहां जुल्म सितम हो रहे हैं, ना तुम खा सकते हो ना पी सकते हो ना इबादत सही तरह कर सकते हो, हिजरत कर जाओ। काफिरों को पता चल गया कि मुसलमान हिजरत कर रहे हैं, सरकार ने हुक्म दे दिया, तो उन्होंने क्या किया, निगरानी शुरू कर दी, देखो कौन जाता है। देखा सहाबा जा रहे हैं, और जब जाएंगे तो जाहिर है साजो सामान लेकर जाएंगे, कि अब यहां रहना तो है नहीं, अब मदीने मुनव्वरा में रहना है। तो इन्होंने क्या किया, रास्ते में रोकते थे, कहां जा रहे हो? क्या मदीने जा रहे हैं? ठहर जाओ, सामान यहीं छोड़ दो, ये पैसा हमें दे दो, तुमने मक्के में कमाया है, मदीने नहीं ले जाने देंगे, तंग करने के लिए, ताकि अब ये साजो सामान छोड़कर जाएं, वहां जाकर परेशान हो। पैसा जरूरत है ना, पैसा नहीं होगा तो कहां से खाएंगे, कहां से पिएंगे, कैसे कारोबार करेंगे, क्या काम करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। पैसा यहीं छोड़ दो, ये सामान यहीं छोड़ दो, ये कपड़े यहीं छोड़ दो, कुछ नहीं ले जाने देंगे, सिर्फ तुम जा सकते हो। कुर्बान हो जाओ उन सहाबा पर, इस्लाम की खातिर अपने घर को छोड़ दिया, अपने शहर को छोड़ दिया, अपने अजीज और रिश्तेदारों को छोड़ दिया, दौलत को छोड़ दिया, ईमान की दौलत लेकर चले गए। वो जानते थे ईमान की दौलत अगर छिन जाए तो फिर मुश्किल होगी, फिर मिलना मुश्किल होगी, ये जाहिरी दौलत तो फिर कमा लेंगे। साजो सामान छोड़ दिया, दौलत छोड़ दी, मालो अजबाब छोड़ दिया, सिर्फ ईमान की दौलत लेकर चले गए। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजाजत हो मैं भी हिजरत कर लूं? ये सारे हिजरत कर रहे हैं, मुझे भी इजाजत? फरमाया अबू बकर ठहर जाओ, हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हें कोई बेहतरीन रफीक सफर अता कर दे, जल्दी नहीं करो। मिजाज शिनासे रसूल, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला ने समझ गए कि हुजूर का इशारा अपनी तरफ, चले गए। और जाते ही क्या किया, दो ऊटनियां तैयार की और अपने नौकर से कहा कि इनको फलां जगह ले जाओ, इनको चारा दो, इनको पानी दो, तैयार रखो, कब हुक्म आ जाए और हमें जाना पड़े। इधर हजरत जिब्रील अलैहि सलाम तशरीफ ले आए, सरकार ने फरमाया जिब्रील मन युहाजिर माई, कौन है जो मेरे साथ हिजरत करेगा? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाते जो आपके साथ हिजरत करेगा अबू बकर वहुव सिद्दीक, उनका नाम अबू बकर है, वो सिद्दीक है, वही आपके साथ हिजरत करे। सरकार ने फरमाया ठीक, हिजरत का हुक्म हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शाने नबुव्वत में उधर मीटिंग हो रही है, किस तरह ख़त्म करें, किस तरह मारें, इस्लाम की तरक्की को कैसे रोका जाए। किसी ने कहा ऐसा करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर दो, जब ये नहीं होंगे इस्लाम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। मीटिंग हो रही है, सारे के सारे जमा हुए दारुन नदवा में, दारुन नदवा था वह, एक इंडिया में भी है, ये उसी की शाख है। दारुन नदवा में सारे जमा हो गए। और जमा किस लिए हुए? सरकार द्वारा मरे सलातो वसलाम को किस तरह मारे। अब शैतान ने देख लिया कि सारे जमा हो रहे हैं, वो भी एक लंबा सा चोगा पहन के और एक पगड़ी सी बांध के, और वो भी चला। अबू लहब, अबू जहल, ये सारे जितने भी थे, उतबा शैबा जितने भी थे सरदार, काफिर दुश्मनाने रसूल, सारे जमा हो रहे थे। उन्होंने कहा खास मीटिंग है, कोई आम आदमी नहीं आए, जितने सरदार हैं बस वो आएंगे। अबू लहब खड़ा हो गया, अबू जहल सब खड़े। देखा कि एक शेख साहब आ रहे हैं, जुप्पा पहने हुए हैं, पगड़ी बांधे हुए, अंदर दाखिल होने लगे। अबू जहल ने पूछा आप कौन, आपका ताल्लुक किस कबीले से? इन्होंने कहा शेख नजदी। अच्छा शेख नजदी का, मैं नजद से आया हूं, नजद, आइए आइए, तशरीफ लाई, उनको बिठा दिया। अब मीटिंग शुरू हो गई। एक ने कहा ऐसा करो तलवार लेकर जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माजल्ला खत्म कर दो। दूसरे ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, मसला हो जाएगा, जो कत्ल करेगा बनु हाशिम, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले वाले, वो किसास मांगेंगे, और जो कत्ल करेगा कातिल को उसके बदले कत्ल किया जाएगा, फिर क्या करें? दो तीन आदमी जाके मार दें, किसी ने कहा कुछ कर दो, किसी ने कहा कुछ, सब तजवीजें पेश करते रहे। ये शेख नजदी जो था ये बोला सुनो मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं करो। किसी ने कहा मक्के से निकाल दो, शहर बदर कर दो। इसने कहा नहीं मेरी तजवीज सुनो। उनका सुनो शेख साहब क्या कर। और शेख साहब ने क्या तजवीज दी, ये बड़ा फितना है, ये बहुत मक्कार शैतान, इंसानी लिबास में आया था ना। इसने क्या कहा, इसने कहा सुनो अगर एक आदमी मारेगा तो उसको हुजूर अलैहि सलातो सलाम के बदले कत्ल किया जाएगा, कबीले बनो हाशिम वाले किसास लेंगे, और पता चलेगा किस कबीले का आदमी, अच्छा इसने मारा ये हुआ। अगर शहर बदर कर दोगे तो ये तो आराम से जाके अपनी तबलीग शुरू कर देंगे, ये जहां पहुंचते हैं लोग इनके साथ हो जाते हैं। अगर ये काम करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो ये होगा। उन्होंने कहा फिर तुम भी तो बताओ क्या करें। कहा मेरी एक तजवीज है, हर कबीले से एक जवान ले लो, जितने कबीले हैं वो एक जवान दे, मुसल्ला तलवार के साथ, नेजे भाले के साथ, वो सब काशाने नबुवत का मुहासरा कर लें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर का मुहासरा, और जैसे ही ये बाहर निकलें सब मिलकर हमला कर दें। जब मिलकर हमला करेंगे तो क्या होगा, बलवा हो जाएगा, हंगामा, अब पता ही नहीं चलेगा किसने मारा, काम भी हो जाएगा अपना। और जब वो लोग पूछेंगे बनु हाशिम वाले, कबीला बनु हाशिम के लोग, हम कहेंगे पता नहीं किसने मारा, ये तो एक मजमा था, सबने एकदम हंगामा हुआ, लड़ाई हुई, मार दिया, काम हो जाएगा। उन्होंने कहा वाह शेख साहब आपने बड़ी अच्छी तजवीज दी। शैतान चला गया, हर कबीले ने एक जवान दिया और तलवारें लेकर खड़े हो गए। अब गौर करो, एक मकान है और उसके चारों तरफ काफिर तलवारें लिए खड़े, निकलने नहीं देंगे, मार देंगे, खत्म कर देंगे। मशीयत रब्बानी मुस्कुरा रही है, तुम निकलने नहीं दोगे, तुम मारना चाहते हो हम महबूब को जिलाना चाहते हैं, तुम खत्म करना चाहते हो हम बाकी रखना चाहते हैं, कैसे नहीं निकलने दोगे? हमारी शान देखो, हमारी कुदरत देखो, हमारा महबूब तुम्हारे सामने से गुजर जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। खड़े हो गए तलवारें लेकर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर और बाहर चमकती हुई तलवारें नजर आ रही। रात का वक्त है, उधर वही रब्बानी नाजिल हो गई है, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाइए। अब कोई और होता तो डरता, अरे ये तलवारें लिए खड़े हैं, मैं निकलूंगा मारेंगे। और सरकार का अपने रब पर मुकम्मल एतमाद और भरोसा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी वक्त काशाने नबुवत से बाहर निकले। अल्लाह फरमाते महबूब सूरह यासीन की तिलावत कीजिए, एक मुट्ठी खाक उठाकर इन पर फेंक दीजिए, हम नींद गालिब कर देंगे, आप गुजर जाएंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा। वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन वमिन खल्फहिम सद्दन फअग्शैनाहुम फहुम ला युबसिरून, हमने तो दीवारें हाइल कर दी, ये देख ही नहीं सकते। सरकार ने मुट्ठी खाक उठाई, उनके सरों पर फेंक दी, ऊँगने लगे, सारे ऊँगने लगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए, पता भी नहीं चला। और एक और बात, वो जो खड़े थे ना मारने के लिए, वो कबीले वाले, उनकी अमानतें सरकार के पास, किसी और के पास होती, आपके पास किसी की अमानत हो और वो आपको मारने के लिए तैयार हो जाए, दोगे वापस? है कोई? अरे दोस्तों की नहीं देते तो दुश्मनों की क्या दो। आजकल तो अमानत को अपना जाति माल समझा जाता है, जब मिल गई तो मिल गई, बस ये मेरी है, मुझे देने की जरूरत ही नहीं है। हुजूर ने अपने उसवे हसना से साबित कर दिया, और कैसे साबित किया, हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला को बुलाया, अली ये अमानतें रखो अपने पास, ये जो मारने के लिए आए ना मुझे, मेरे दुश्मन, ये उनकी अमानतें हैं, आज रात मेरे बिस्तर पर सोना, सुबह उठना, अमानत देना, मदीने चले आना। अपने अमल से कि देखो मैं दुश्मनों की अमानतें दे रहा हूं, तो मेरे उम्मतियों देख लो मेरा अमल ये है, तुम्हारा नबी दुश्मनों की अमानतें लौटा रहा है, तुम दोस्तों की नहीं लौटाते। अहद कर लो आज से कि अगर किसी की अमानत होगी हम उसी तरह उसको वापस लौटाएंगे, ये सरकार की सुन्नत है। और हजरत अली शेर खुदा सुभान अल्लाह एक से एक साहबी, हर एक के अंदाज अलग है, लेट गए बिस्तर पर, अगर किसी के पीछे लोग लगे हो मारने के लिए, इस आदमी को मारना है और आपसे कहा जाए उसके बिस्तर पर लेट जाओ, है किसी में हिम्मत, डरेगा नहीं, अरे उसके शुभ में मुझे नहीं मार दे, मैं उसके बिस्तर पे क्यों लेटूं, मैं उसके कुर्सी पे क्यों बैठूं, मैं उसके घर में क्यों रहूं, कोई उसको मारने के लिए आए और मैं मर जाऊं, अपनी जान तो सबको प्यारी, लेकिन कुर्बान हो जाओ अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला ने इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ बिस्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लेट गए। इत्मीनान की नींद, अली को इत्मीनान की नींद कैसे आ गई? अली उस मर्द मोमिन का नाम है जो मौत को अपने सामने समझता है, मौत आ सकती है, कभी भी आ सकती है, और मौत ने आकर बता दिया है कि मैं उम्र के किसी हिस्से में भी आ सकती हूं। मौत आती है ना, पैदाइश से पहले भी मौत आई है, विलादत के बाद भी मौत आई है, बचपन में भी मौत आई है, लड़कपन में भी मौत आई है, जवानी में भी मौत आई है, बुढ़ापे में भी मौत आई, मौत ने उम्र के हर हिस्से में आकर बता दिया मैं आ सकती हूं और आती हूं। तो हजरत अली को खतरा नहीं था कि मौत आ सकती? नहीं, बिल्कुल खतरा नहीं था। क्यों? उनको यकीन था मेरी हयात की जिम्मेदारी नबी ने ले ली, मुझे मौत आ सकती है लेकिन आज की रात नहीं आएगी, कि सरकार ने फरमाया अली बिस्तर पर लेटना, सुबह उठना, अमानत देना, चले आना। तो हयात अली की जिम्मेदारी नबी ने ले ली, हयात अली की जिम्मेदारी नबी ने ले ली, तो जिसकी हयात की जिम्मेदारी नबी ले लें वो अली होता है, और जिसकी जिम्मेदारी अली ले लें वो वली होता। जिम्मेदारी ले ली, सो गए आराम से, आज मौत नहीं आएगी। उधर क्या हुआ, सरकार तशरीफ ले गए, अब वो ऊंग रहे सारे, और हुजूर अलैहिस्सलाम सीधे तशरीफ ले गए सैयद अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला, आहिस्ता से दरवाजे पे दस्तक दी, इन्होंने फौरन दरवाजा खोल दी, अबू बकर सोए नहीं, सरकार जब से आपने फरमाया है आंख ही नहीं लगी, कब हुजूर तशरीफ ले आए, कब हिजरत का हुक्म हो जाए, फरमाया चलो रब ने हुक्म दे दिया है, फौरन तैयार हुए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर तुम मेरे साथ हिजरत करोगे तो मेरे वालिद की आंखों से आंसू जारी हो, फरमाती मैं समझती थी कि आंसू सिर्फ गम के वक्त निकलते हैं, मैंने खुशी के वक्त आंसू निकलते हुए उस वक्त देखे कि मेरे वालिद इतने खुश हुए कि खुशी में उनकी आंखों से आंसू निकल आए कि मैं हुजूर के साथ हिजरत करूंगा, मैं रफीक सफर बनूंगा, आंखों से आंसू जारी। और फिर ये दोनों वहां से चले, ऊंटनियों को आगे भेज दिया, अब रात की तारीकी है, दोनों जा रहे हैं, दुश्मन घात में है, आहिस्ता आहिस्ता सवारी चली जा रही, ये आगे बढ़े, फिर ऊंटनियों पे बैठे, फिर आगे रवाना हो गए। उधर शैतान ने देखा ये तो निकल गए, और ये सोए जा रहे हैं सारे जो खड़े हुए थे मारने के लिए, ऊंग रहे, और मट्टी पड़ी थी ना सर पे जो मुट्ठी फेंकी थी सरकार ने, कुरान ने कहा वमा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, मैं भी वो मुट्ठी आपने फेंकी नहीं, आपने नहीं फेंकी, नहीं वो तो अल्लाह ने फेंकी, महबूब के फेंकने को अपना फेंकना करार दे दी। खैर वो एक अलग बहस है। उसने कहा तुम क्यों खड़े हो, उठाया जाके उनको जो ऊंग रहे थे, उन्होंने उठते ही कहा मार देंगे, निकलने नहीं देंगे, खत्म कर देंगे, क्या किसको निकलने नहीं दोगे, गए वो तो, वो तो चले गए, कहां से चले गए? अब देखा ना, तुम्हारे मुंह पे एक मट्टी डाल के गए, एक मुट्ठी खाक फेंक कर गए, अब सर पे हाथ मारे तो मट्टी झड़ रही। अरे ये क्या हुआ? नहीं, वो सामने है। कहा जाओ देखो। दरवाजा खोला तो एक आदमी लेटा हुआ है, सब्ज रंग की चादर ओढ़े। कहा यही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चादर हटाई तो अली खैबर शिकन रदी अल्लाह ताला। अरे कहां गए? कहा तो रात को ही चले। अब इनको गुस्सा आया, इधर घोड़ा दौड़ाया, उधर दौड़ाया, इधर भाग रहे हैं। सरकार तो तशरीफ ले गए। कुरान ने कहा वल्लाहु यासिमु का मिनन नास, ऐ महबूब हम आपकी जान को काफिरों से बचा लेंगे। ये मारना चाहते हैं, हम जिलाना चाहते हैं, ये खत्म करना चाहते हैं, हम अपने महबूब की हिफाजत करना चाहते हैं। और मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला जबरदस्त है, उसने अपने कुदरत का करिश्मा दिखा दिया। तुम सब मिलकर भी मेरे महबूब को एक अदना सी तकलीफ भी नहीं पहुंचा सकते, मैं बहिफाजत उनको गुजार दूं। चले गए। और सिद्दीक अकबर की शान क्या है? मोहब्बत का अंदाज देखो, सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं, ये कभी आगे चलते हैं हुजूर के, फिर ख्याल आता है तो फिर दाएं तरफ चलते, फिर ख्याल आता है तो पीछे चलते, फिर ख्याल आता है तो बाएं जाने, घूम रहे हैं। फरमाया अबू बकर क्या कर रहे हो? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान, मुझे ख्याल आता है कोई आगे से हमला ना कर दे तो मैं आगे आ जाता हूं, कि मुझ पर हमला हो जाए, सरकार तक कोई तीर कोई चीज ना पहुंचे। फिर ख्याल आता है कोई दाएं जानिब से हमला ना कर दे तो मैं इधर चलने लगता, फिर ख्याल आता है कोई पीछे से ना कर दे तो मैं पीछे, फिर ख्याल आता है बाएं जानिब से तो मैं इधर। हुजूर ये शमय रिसालत आप हैं, मैं परवाना हूं। परवाने का काम ही घूमना है, आप शमय रिसालत हैं, मैं परवाना बनकर घूम रहा। अपनी जान खतरे में पड़ जाए, रसूल को कोई तकलीफ ना पहुंचे, ये है सिद्दीक अकबर का इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहुंचे, वाकया तो तवील है, मैं जरा इसको वक्त की नजाकत की वजह से कुछ चीजें मैं छोड़ रहा हूं। गार में सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला ने कहा हुजूर ठहर जाएं, पहले मैं चला जाऊं, काफी दिन से गार बंद है और गार में सांप भी हो सकता है, बिच्छू भी हो सकते हैं, हशरातुल अर्ज रींगने वाले जानवर हो सकते हैं ना, कोई इंसान तो आ नहीं रहा वहां पर, और गार भी बिल्कुल छोटा के आदमी बिल्कुल झुक कर फिर अंदर जाए और वहां भी बैठ नहीं सकता, लेट जाए। पहले चले गए, पूरे गार को साफ किया, सब कूड़ा निकालकर बाहर किया और अपने कपड़ा फाड़ फाड़ के सुराखों को बंद किया। सुराख इस बात की अलामत थे कि यहां सांप है, सांप का बिल होता है ना, उसी में से सांप निकलता है। इन्होंने कहा यहां से निकल जाए तो इसको बंद कर दो, यहां से निकले तो इधर बंद कर दो, यहां से निकले तो सारे सुराख बंद कर दिए, कपड़ा खत्म हो गया। एक सुराख रह गया, उस पर अपनी एड़ी रख दी। कहा हुजूर तशरीफ ले आई, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए और अपना सर अनवर सिद्दीक अकबर के जानू पर घुटने पर रख के लेट गए, आराम फरमाओ। उसी सुराख से जहां पर एड़ी है सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला की, सांप ने डंग मारा। सांप निकलना चाहता था, क्यों? क्या अजियत पहुंचाना चाहता था? नहीं, मेरा ईमान है वो भी हुजूर की जियारत करना चाहता। उसको पता चला कि आज तो मेरे गार में सरकार तशरीफ लाए हैं, शहनशाह कौनो मकान तशरीफ लाए हैं, आज तो मेरे गार की ये किस्मत, मैं भी तो जियारत कर लूं। वो भी आशिक था, ये भी आशिक थे, वो आशिक देखना चाहता था, ये आशिक रोकना चाहता था। और रोकना क्यों चाहता था? इनको था कि कहीं ऐसा नहीं कोई डंग ना मार दे, तकलीफ ना पहुंचा दे। इम्तिहान इनका भी था, इम्तिहान उसका भी था। फारसी में सांप को कहते हैं मार, सांप को क्या कहते हैं? मार, मारे गार, यानी गार का सांप, मारे गार। वो था मारे गार और ये थे यारे गार। वो मारे गार और ये यारे गार। अब मारे गार और यारे गार में लड़ाई हो रही है और फिर यारे गार मारे गार पर गालिब आ गए। अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, तुझे निकलने नहीं दूंगा, कहीं ऐसा नहीं मेरे रसूल को तकलीफ ना पहुंचा दे। एक दफा डंग मारा, दूसरी दफा, तीसरी दफा जहर फैलना शुरू हो गया। अरे किसी के एक दफा पड़े तो वो तो उछल के भाग जाए। कुर्बान हो जाओ उस आशिक रसूल पे, अपनी जान दे रहे हैं रसूल के खातिर, मैं इसको निकलने नहीं दूंगा, क्या मेरी जान चली जाए। तकलीफ की शिद्दत, आंखों से आंसू निकले, चेहरे मुस्तफा पर गिरे। सरकार ने मुकद्दस आंखें खोल दी। अबू बकर क्या हुआ? हुजूर सांप ने डंग मार दिया, तकलीफ है। हटाओ, एड़ी हटाई, लोहे दहन लगाया, उसी वक्त सही होगी, उसी वक्त सही होगी। उधर काफिर आगे बढ़े, मकड़ी ने जाला बुन दिया, कबूतर ने घोंसला बनाकर अंडे दे दी। अब ये वहां तक पहुंचे, पैरों के निशान, हाँ यहां तक आए और आगे चलो, यहां तक आए और आगे चलो, आगे देखा निशान ही नहीं। अरे यहां तक तो निशान है, इसके बाद कहां गए? किसी ने कहा गार में गए होंगे। अबू जहल ने कहा बेवकूफ, गए होंगे तो ये जाला क्यों नहीं टूटा? सोचने की बात है ना, अल्लाह ताला की कुदरत का इंतजाम देखो, हर चीज हुजूर की खिदमत में लगी हुई है। मकड़ी भी जाला बुन कर खिदमत कर रही है, कबूतर घोंसला बनाकर अंडे देकर खिदमत कर रहा। और इमाम कस्तलानी ने लिखा कि आज जो हरम में कबूतर घूमते हुए नजर आते हैं, यह उसी कबूतर के जोड़े की नस्ल है जिसने हिजरत की रात घोंसला बनाकर अंडे दिए थे, उसने खिदमत की थी, उसको सिला यह मिला कर उसकी नस्ल कयामत तक हरम में घूमती रही। हरम के कबूतरों को मारना मना है, उनको पकड़ना मना है, ये उसी खिदमत का सिला मिल रहा, पूरी नस्ल को खिदमत का सिला मिल रहा। दिमाग घूम गया, यहां तक तो आए हैं, इसके बाद कहां गए? वो कहते अंदर होंगे। वो अबू जहल खुद क्या था, बेवकूफ, अंदर कैसे, ये जाला नहीं टूट जाता, और ये कबूतर का घोंसला, ये अंडे, मुझे तो लगता है ये जाला जो है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से भी पहले का, यहां तक तो कोई आया ही नहीं, अल्लाह ने दिमाग ही घुमा दिया। वो बेचारा अब सोचता है यहां तक आए तो फिर कहां गए, कदमों के निशान तो गार तक है ना, उसके आगे है ही नहीं। कहा चलो चलो वापिस चलो, वहीं से वापस हो गए। उसी मौके पर जब उनके कदमों की आहट सुनी, उनकी आवाज सुनी, तब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने घबराए, हुजूर वो तो हमारे सर तक पहुंच गए, अगर झुक कर देख लिया हम नजर आ जाएंगे। ला ताहसन इन्नल्लाह माना, अबू बकर गम न करो, अल्लाह हमारे साथ। इसी को कुरान ने बयान कर दिया, सानी इसनैनी इज हुमा फिल गार इज यकूलु लिसाहिबी ला ताहसन इन्नल्लाह माना। दो में से दूसरे जब उन्होंने कहा अपने साथी से गम न करो, अल्लाह हमारे साथ, अल्लाह तबारक व तआला ने बचा लिया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी जान को काफिरों से बचा लेंगे, और बचाकर दिखा दिया, अकलों को ही घुमा दिया। ये शान है सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने। इसीलिए सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने फरमाते थे, अगर अबू बकर अपनी दो नेकियां मुझे दे दे, मैं अपनी सारी नेकियां अबू बकर को दे दूं। दो नेकियां मुझे दे दे, मैं सारी नेकियां उन्हें दे दूं। कौन सी दो नेकियां? एक हिजरत का सफर, जब वो सरकार के साथ रहे और दिन रात उन्होंने खिदमत की, ये नेकी अबू बकर मुझे दे दे। और दूसरा किताल मुर्तदीन, जो लोग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद मुर्तद हो गए, जकात देने से इनकार कर दिया, दीन इस्लाम से फिर गए, सिद्दीक अकबर ने उनसे जिहाद किया। कैसा कड़ा वक्त था इस्लाम पर, मुसलमान गमगीन थे, सरकार ने जाहिरी तौर पर पर्दा फरमा लिया था। उस वक्त लश्कर इस्लाम का जाना जंग करना कितनी मुश्किल बात थी, कुर्बान हो जाओ उस जानशीन रसूल पर जो इस्तेकामत का पहाड़ बन गए। फरमाया मैं इनसे किताल करूंगा, मैं इनसे लड़ूंगा, चाहे मेरी जान भी चली जाए, लेकिन मैं इनको सबक देकर रहूं। और उन्होंने जिहाद किया, अल्लाह ने उनको कामयाबी दी, फितनों की सरकोबी की सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने। खत्म नबुवत का फितना, नबुवत का दावा जिन्होंने किया सबको खत्म करके रख दिया। सिद्दीक अकबर की ये शान है, अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार रहमत नाजिल फरमाए उनके मरकद मुबारक पर। ये मैंने उनकी हयात मुबारक के चंद गोशे पेश की, आपकी हयात मुबारक तो बहुत वसी है, ये चंद गोशे आपके सामने पेश की। अल्लाह तबारक व तआला उनकी नालायन पाक से लगे हुए जर्रों के सदके में हमारे गुनाहों को माफ़ करे। सहाबी का मकाम क्या है, अगर जहां उनका घोड़ा कदम रखता है उस घोड़े के कदमों के नीचे जो मट्टी आती है, खुदा की कसम वो मट्टी हमें मिल जाए तो हमारी मगफिरत हो जाए। ये सहाबा का मकाम है, ये उनका मर्तबा है। आइए दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के दिलों में सहाबा की मोहब्बत पैदा फरमा, या अल्लाह अहले बैत की मोहब्बत पैदा फरमा, یا اللہ ائمہ کرام کی محبت پیدا فرما، یا اللہ بزرگان دین اولیاء کاملین کی محبت پیدا فرما۔ اے الہ العالمین، ہم سب کو ان تمام نفوس قدسیہ کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔